खूब भीषण त्रास, इसीलिए मैं कहती हूं कि मेरा हृदय कांपता है, मुझे डर लगता है। इसलिए हे संसारी, खबरदार मत जाना कहां वृंदावन में, और उसका खबरदार दर्शन मत करना, मुझे डर लगता है। तुम्हारा हो जाएगा सर्वनाश, क्या सर्वनाश हो जाएगा, फिर तुम नहीं लौटेगी और नहीं लौट के इसे संसार क्या क्या दशा होगा। और युवकों को भी कह रहे, खबरदार तुम लोग मत जाना, नहीं तो फिर ज्योति अपनी स्त्री से, माता से, भाई से, बंधु से, किसी से भी स्नेह नहीं रह जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसे खबर मत जाओ, यदि बंधुओं के साथ में रह करके रंग पूर्वक संसार में जीवित रहना है, मत जाओ खबरदार। इसलिए यहां पर गोपियां कह रही है, जत गोदुम द्विज निगा पुलकान्न विभ्रन। यदि इन मृगों को, इन पक्षियों को, इन गायों की और इन पेड़ों की, यदि वृक्षों की ये दशा हो जाती है, उनका धर्म विपरीत हो जाता है, जड़ चेतन और चेतन जड़ हो जाता है, ताकि धर्म विपरीत हो जाए, जड़ चेतन, चेतन जड़ हो जाए, तले अमरा सरल स्वभाव, कोमल स्वभावा, একটি সুন্দর রূপ, একটা মধুর কোন শব্দ শুনেই আমাদের চিত্ত বিগড়িত হয়ে যায়, তাহলে আমাদের ধর্ম বিপরীত তাহলে কথাই লাগে। অতএব যদি দোষ থাকে, আমরা ঘর ছেড়েছি, যদি আমরা বন্ধু বান্ধবকে ছেড়ে দিয়ে তোমার নিকটে এসে গেলাম, আর প্রতি সেবা করি নাই, তাহলে এতে আমার দোষ কি? এই আমরা যে অধর্ম করলাম, এর জন্য মূল দায়ী তুমি, এই জন্য তুমি অধর্ম। তবে একটি কথা, আমরা ঘর ছেড়ে দিয়ে এখানে এসেছি, আমরা অধর্ম করলাম, এটা ঠিক আমরা মেনে নিলাম, পতি পুত্র সত্যকে ছেড়ে দিয়ে মহা অধর্ম, আমরা অবৈধিক কার্য করলাম। কিন্তু আপনার মতন এত শিক্ষা দাতা গুরু পাওয়া যায়, এই বিপদ থেকে আপনি আমাদেরকে রক্ষা করতা, তো আপনি আমাদের গুরু থাকুন। কিন্তু শাস্ত্রে লেখা আছে যে গুরু ঠাকুরের আগে পূজা করে দিয়ে তারপরে ভগবান আর অথবা যাহার নিজে পতি পুত্র ইত্যাদি কে পরে সেবা করবে, উঠে সকাল বেলা কি করবে, গুরুদেব কে স্মরণ করবে, গুরুদেবের পূজা করে দিয়ে তারপরে পতি পুত্র বন্ধু বান্ধব সকলকে সৃষ্টি করবে, সব লোকা পিছিয়ে করেগা, পহলে হোগা গুরুজি কা। তো আপনার জায়গা ইতনা সুন্দর শিক্ষা দেনে বালা গুরু তো দূসরা কোনো, হাম লোগো নে আপকো গুরু কে রূপ মেহি বরণ কর দিয়া, আমরা আপনাকে গুরু রূপে তো বরণ করলাম, অতএব আপনার পূজা আমরা আগে করি আর আপনি এটা গ্রহণ করুন। কৃষ্ণ দেখ তো বেকায়দা ফেল রয়েগা, কৃষ্ণ সোচা জিনোনে হমকো
বাত মে ফসা লিয়া,
মানে এসা বাঁধ লিয়া, আজ আব হম ক্যা কহে, কুছ সোচনে লগে যে কুছ কহে, ইতনে মে ফির গোপিয়া কাতি না, আচ্ছা তো দেখিয়ে গীতা মে আপনি ইয়ে আপ তো কহতে হ্যায় কি মে বই ভগবান হুঁ, তো আপ ভগবান ভি হ্যায় আর গুরু ভি হ্যায়, তো কহতে হ্যায় কি যে যথাং মাম প্রপদ্যন্তে তাম তথৈব ভজাম্যহম্, जो जैसा हमारे प्रति भजन करता है साधन करता है, हमको जो कुछ मानता है हम भी उसी उसमें उसी सेवा का प्रतिदान करते हैं। तो हमने अपना हृदय सब आपके चरणों में समर्पण कर दिया है, तो आप भी हमारे प्रति अपना हृदय समर्पण कर दीजिए, और नहीं करते हैं तो ये धर्म उल्लंघन का दोष आपके ऊपर में जो गुरु बतला रहे हैं, यदि गुरु ही को वो काम न करें और दूसरों को शिक्षा देते हैं तो फिर गुरु कैसा रहे, इसलिए यदि कोई प्रत्यवाह या पाप हुआ तो आपको होगा, इस यदि हमको नहीं ग्रहण करते हैं, इसलिए आप अपनी बातों की रक्षा के लिए हमें स्वीकार कीजिए। दूसरी बात, सर्वधर्मान प्रत्यज्यमान एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शिष्य, आपने गीता में यह भी लिखा जो समस्त धर्मों को छोड़ करके कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है उसके समस्त जितने पाप हैं उनसे मैं छुटकारा दे देता हूं। तो हम अपने पतियों को पुत्र को और सबको छोड़ करके आई हैं, हमसे कोई पापी जगत में नहीं है, ये बात ठीक है, हमने मान लिया ये हमसे कोई पापी, हम सबसे अधिक पापी नहीं है, किंतु आपका हम अब शरण ग्रहण कर रहे हैं तो उन पापों से तो आप हमें जरूर ही छुटकारा दे देंगे, हमको ये पूर्ण विश्वास है, जो जरूर छुटकारा हमें भी पूर्ण विश्वास, যে আমরা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার চরণেতে যদি প্রণত হই, যত পাপই হই না কেন ওই পাপ থেকে আপনি নিশ্চিত ইচ্ছুক করার দিয়ে দেবেন, অতএব আমাদের কোনো চিন্তা নেই, অতএব এখন আপনার কর্তব্য হচ্ছে আমাদেরকে গ্রহণ করা, আমরা যেরকম আপনার উপাসনা করছি। ঈশ্বর সে ইয়ে বতলা রে হ্যাঁ যে কৃষ্ণ কতনে সুন্দর হ্যাঁ, ইতনে সুন্দর হ্যাঁ ইয়ে তো বতলায় হি কারণ এক জগা হ্যাঁ, প্রসঙ্গ কব কা হ্যাঁ, প্রসঙ্গ কখন কা, কৃষ্ণচন্দ্র অন্তর ধ্যান হয়েছে, কৃষ্ণচন্দ্রজি অন্তর ধ্যান হয়ে লীলা আশ্রম বর্ণ কর দিয়া, যদুপুর কা ধ্বংস হো গিয়া, কৃষ্ণ উদ্ধবজি কো কহা ইহা সে বদ্রীনারায়ণ চলে যায়, বীচ মে আপকো বিদুর সে ভেদ হোগি, হমনে আপকো যে তত্ত্ব বতলায়া হ্যায় উদ্ধব সন্দেশ উদ্ধব সম্বাদ, ইসমে সমস্ত ধর্ম কি বাতে বতলাই হ্যায় হমনে, সমস্ত ধর্মের কথা বলেছি, এই সব বাতে বিদুর কো শুনানা, আর ইসকে বাদ মে তুম বদ্রিকাশ্রমে চলা জানা, ওহাঁ পর বিদুর আপসে মিলে, वहां पर आपकी मनोकामना भी सिद्ध होगी, और उनसे ये सब बातों को भी बतलाएं, ये कथा से कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, ये विरह रस में डूब गए और उनका आदेश पालन करते हुए वहां से चले, जब वहां से चले विरह में हृदय धरा पड़ा, इसी कुरु जंगल देश में कहीं अर्थात यमुना के किनारे उनकी विदुर से भेंट हुई, अब विदुर से भेंट होने पर विदुर ने कुशल संवाद पूछा, जो जदुकुल का संवाद क्या है, कृष्ण कुशल से हैं, बलदेव जी कुशल से हैं, रोहिणी मैया और सब लोग ब्रजवास वहां के जितने लोग हैं सब कुशल से हैं, तो सुनते ही उनको स्मरण हुआ और आंखों से आंखों की धारा गिरने लगी और विलाप करने लगे रोते रोते, ओहो कृष्ण जब चले गए तो यहां से जितना पृथ्वी का सौभाग्य था, जदुकुल का जो सौभाग्य था, वो सब अपने साथ लेकर के चले गए, कुछ बाकी नहीं रहा। हम तो केवल सब रोने के लिए यहां पर पड़े हैं। ओहो कृष्ण जब आए मथुरा में और वहां से जब ब्रज में गए, ब्रज में लक्ष्मी जी उसकी शोभा को बढ़ाने लगी, कुंजों के रूप में प्रकट हो गई, समस्त सौंदर्य माधुर्य जैसा वहां पर उपस्थित हो गया। कैसी कैसी सुंदर मनमोहक लीलाएं, और फिर वहां से मथुरा में आए, कंस इत्यादि को मारा, इसके बाद में द्वारका में आए, तरह तरह की लीलाओं को प्रकाश किया। ये कहकर के और रोने लग गए, जितना स्मरण करते हैं उतना रोने लग गए। अंत में वो कहते हैं वो कृष्ण कैसे सुंदर, मानो उन्होंने जोग माया के बल को दिखलाने के लिए, जोग माया के बल से अपने ऐसे सुंदर रूप को प्रकट किया जिसको देख करके और लोगों की तो बात क्या, स्वयं कृष्ण अपने आप मुग्ध हो गए, जब इतना सुंदर हूं नहीं। अर्थात जोग माया प्रभावे से एमन त्रिलोक थी कह अतंत सुंदर रूप तार मतुना रूप में ए रकम रूप के जोग माया द्वारा प्रकटित करे थी। किसे जन्म यही मर्थ लीला उपयोगी ये समस्त लीला चरित्र हो गए, उसी को ये बतला रहे हैं। जन्मस्थलीलोपैकम स्वजोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम विस्मापनम स्वस्थ सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषण। उद्धव रोते हुए कह रहे हैं जन्मत्सलीलोपैकम, मत्स्य लीला के मत्स्य लोगों के जो मरणशील लोग हैं ये पृथ्वी लोग, ये लोग भगवान को छोड़ करके और इतनी सुंदर सरस लीला भगवान का जिसमें वो डूब रहे थे उसको छोड़कर कहां ये घृणित कर्म मार्ग से उत्पन्न हुए ये काम और ये भोगों के रस में डूबे हुए ये मरणशील ये मनुष्य हैं, भगवान को छोड़ करके इसमें डूब रहे हैं। ऐसे लोगों के फिर अपने लीलाओं के द्वारा आकर्षित करके अपनी लीला रूपी समुद्र में, अमृत समुद्र में निमज्जित कराने के लिए, उन्हें नित्य काल के लिए संसार से निकालने के लिए अपने अत्यंत सुंदर से सुंदर रूप को, जो नारायण और श्री रामचंद्र जी जो परम सुंदर हैं, उनसे भी सुंदर रूप को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? जोग माया के बल से। जोग माया बल की क्या जरूरत है? जोग माया न रहे तो कृष्ण का रूप किनमें सच्चिदानंद हम नहीं देख सकते, उनके रूप को कैसे हम देखते हैं? जोग माया कुछ कृष्ण के साथ में संपर्क जीवों का करा देती है और करा करके रूप को दिखला देती है, नहीं तो कृष्ण का रूप हम नहीं देख सकते। साधारण उपमा के लिए देख लीजिए, ये मेवाड़ का आना जिनकी पत्नी मीरा जी घर में लगा करके कुंदे, वो क्या करते अर्गला लगाकर, अभी तक मैं बैठी हुई तन्मय हो रही हूं, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों को थिरक थिरक करके नृत्य कर रही है, मानो कोई वीणा बजा रहा हो, वीणा और बंसी दोनों बज रही है और ये सुध बुध खो करके नाचने में तन्मय है। राणा को सिपाहियों ने खबर दी, हम लोग जो सोचते थे वही बात हुई, कोई एक दूसरा व्यक्ति आया है घर में, किसको उसको छिपा लिया है और दोनों मिलकर के नाच गा रहे हैं, अभी चलिए अभी आपको दिखला दें। राणा सुनते ही क्रुद्ध होकर के हाथों में तलवार लेकर और जल्दी से वहां आए, देखा कि सब चीज तो मेरे तो गुरुघर गोपाल हो रहा है, बिना भी बज रही है, बस अच्छा खोलो खोलो, नहीं खोला तो किया क्या, पैरों से मारा, नहीं पीता तोड़वा दिया दरवाजे को, भीतर गया देखा तो वो अकेले तन्मय होकर के हाथ उठा करके एकदम नाच रहे, शरीर का सुख बोध नहीं, किसके साथ में बातचीत कर रही थी, अभी कहां छिपा दिया, फलन के नीचे तो इसने छिपा दिया, फलन के नीचे देखा, इधर देखा उधर देखा, कहीं नहीं उसको कहाँ रखा, बतलाओ नहीं तो तुम्हें अभी काट डालेंगे। धीरे 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 इनको होश हुआ, कहीं नहीं तो कोई तो नहीं, तो नहीं तू जल्दी बता कहीं है कोई आदमी था, नहीं तो किससे बातचीत करती है, तो यहां से यही तो बैठे हैं, देखो यही तो है हमारा दिल भर यही है। देखो तो सही से कहता है कल सुंदर, ऐसे झूठ बोलती है, तू पागलपन मत कर, तुम ठीक ठीक बतलाओ, हमें तो हमें दिखला दे दी कहा। अच्छा तो ठीक है देख, उसके सिर पर हाथ रख दिया, हाथ पर रखते ही उन्होंने देख लिया कुछ टच हो गया ना, देखते ही तुम देख करके मुक्त हो गया। बस मीरा उसी समय में घर से निकल गई, तो जब एक सेकंड इस घर में नहीं रहा, आराना रोते ही उसके चरणों में गिरता हुआ उसके पीछे पीछे आया, वृंदावन तक आया किंतु नहीं लौटी, किंतु दर्शन उसको करा दिया। फिर बहुत कुमार महास हुआ, किंतु अब तो बात खत्म हो गई थी, घर को छोड़ करके वो चल पड़ा, फिर लौटी नहीं। उसी प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा दक्षिण में रामानुजाचार्य का एक शिष्य थे, तो वो शिष्य होने के पहले बड़े सुरंदर विषय भोगी कामी था, जाति में शूद्र था और लंबा चौड़ा पहलवान था, गुंडों का सरदार था, 20-25 गुंडे उसके सब समय साथ में, डर के मारे कोई भी चू नहीं कर सकता था, डर मारे भय जीते थे ओके क्यों कुछ बोलते ना, और एक बेचा से उसने प्रेम कर लिया, किंतु बेचा कुछ भगवत भक्ति युक्त थी, तो उसने एक दिन बेचा ने कहा कि मैं रंग जी का दर्शन करने के लिए चलूं, यह बात दक्षिण देश में वो रंग श्रीरंगम की बात श्रीरंगम में कथा, बेचा बोल लो ये अमी आज से जाबो दर्शन करते चले अमीओ चल दो मैं भी चलूंगा, जैसे हम जहां जाती है उसका छोड़ता नहीं, छाया की भांति उसके साथ न रहता, उसको कोई लज्जा उज्जा कुछ नहीं, बेहाया एकदम बेशर्मा, कोई क्या कहता है उसके लिए कोई अफवाह देते हो तो सब मार डालेगा, इसलिए सब लोग रास्ता छोड़ करके हट जाते। तो जब चलने लगी तो ये उसके आगे हो गया और उसका मुख भी हाथा हुआ चल रहा है, पीछे 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 से चलता है, वो सामने से चल रही और पीछे से पीछे होकर के उसका मुख देखता हुआ पीछे पीछे चल रहा है, कैसा बिहार। चलते चलते मंदिर में आया, मंदिर में वो साधु जी का पट खोलने वाला है, तो वो ठीक दरवाजे के पास में आकर के खड़ी हो गई दर्शन करने के लिए, और ये बदमाश ठाकुर जी की तरफ में पीठ खड़ा होकर के उसी का मुख देखने लग गया। सब लोग तैयार हैं उसका ठाकुर जी का दर्शन करना, और उसका डर से मारे लोगों ने मंदिर खोला नहीं, पुजारियों ने, ये तो पीठ दर में किए गए है, ये तो अपराध हो जाएगा नहीं खोले। रामानुज को खबर दी गई, रामानुज जी अच्छा चलो मैं चलता, रामानुज वहां पर आए, रामानुज से कहा अरे भद्र लोग, अरे भद्र लोग तुम इसे एटिके दड़ाओ ना, मंदिर ऐसा खोला जाए, मंदिर खोला जाएगा इधर आओ और इधर से खोकर के ठाकुर जी की तरफ में मुख करो। उसने कहा जी आपके जैसा और कोई दुर्भागा है, ठाकुर जी कहां है, इनका क्या रूप है, अरे तुम्हारा रूप सार्थक हो जाएगा जो उनको छोड़ करके इसके तरफ एक बार देखो, फिर उनको देखने की तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, जरा देखो तो कैसा सुंदर इसका मुख कमल है। रामानंद ने कहा इसके करोड़ों गुण सुंदर वो ठाकुर जी का रूप है, तो कभी हो नहीं सकता, जब तक तुम नहीं देखा तब तक वो पत्थर की मूर्ति को तुमने बड़ा सुंदर बना रखा है, इधर देखो। रामानंद ने कहा जैसे अच्छा एक बात करो, मैं कहता हूं यदि एक बार तुम उनको दर्शन कर दिया तो फिर उसके मुख की तरफ में कभी जीवन में नहीं देखेगा, क्या जब उनको इस पर तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं, तुम लोग झूठ बोलते हो, अच्छा से नहीं तो देखो, अच्छा तुम इधर आओ हमारे बात पर विश्वास कर तुमको दर्शन करा दूंगा, इधर आ जाओ। कुछ शक्ति भी थी हम लोगों जैसा नहीं, कृपा करूं कृपा करूं कृपा कीजिए कृपा कीजिए,
अरे साधारण आदमी कृपा करेगा क्या?
हाँ उत्तम अधिकारी हैं और कहेंगे तुमको प्रेमा भक्ति हो जाए तो हो जाएगी, किसी को कोई अभिषम पाक देंगे नारद जी जैसा वृक्ष हो जाओ तो वृक्ष हो जाएगा। मध्यम अधिकारी कृपा केवल इतना ही करता है, यह रास्ता दिखला देगा। ऐसे भजन करो, ऐसे हरि नाम करो, ऐसे हरि कथा सुनो, ऐसे वैष्णव का संग करो, ये तो ये बतला देंगे। किंतु चलेगा कौन? साधक चलेगा। बस यही से इनकी कृपा है ने? बुरी चीज क्या है, अच्छी चीज क्या है, ये बतला देंगे। उसको हरि कथा के माध्यम से ऊपर ले जाने की चेष्टा करेंगे। और जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो कहेंगे उनकी कृपा क्या है, भाई मैं तो कुछ जानता नहीं, हमारे गुरु जी हैं या ऐसे वैष्णव वहां हैं, रसिक वैष्णव सत्सद हैं, वहां पर चलो, वहां पर हम लोग कथा सुनेंगे, तुम्हारा भी कल्याण होगा, ये उनकी कृपा है। इन तीनों ही वैष्णवों के साधक लोग ऋणी होते हैं। किंतु क्रमानुसार रामानुज जी कैसे थे, उत्तम भागवतों में थे, वो जिसको जो कह दें वही हो जाए, भगवत दर्शन भी करा सकते हैं। इसलिए रामानुज के कहने से आप कुछ ऐसी बात की जिससे कि उसकी मति पलट गई और वहां से हट करके खड़ा हो गया साधु जी की तरह, तो अभी सामने उसको रखा पास में। रामानुज ने कहा जी ऐ दरवाजा खोलो पुजारी, बस भीतर में जाकर के साधु जी का आत्मन इत्यादि दे करके और उनको स्पर्श किया। पट खोलते ही सभी लोगों ने जय जयकार किया, बोलो रंगनाथ की जय। दर्शन खुल गया, दर्शन करने लगे सब, उसकी स्त्री भी जो वेश्या थी वो भी दर्शन करने लगी, सब लोग मूर्ति ये कहते थे ये क्या, ये पत्थर की मूर्ति, इसी को आप कह रहे थे हमको तो ये पत्थर दिखता है, पत्थर दिखता है क्या कहते सब। बस रामानंद जाकर के उससे सिर पर हाथ रखा, हाथ रखते देखते ही कांपने लग गया और ऐसी उसकी नजर मिली, निर्जन नजर उसकी अब बंद ही नहीं हो, फर्क नहीं पड़े, और देखते देखते कांपते कांपते निश्चित होकर के रामायण ने फिर उसको उठाया, देखा बस उनके चरणों में लिपट गया, प्रभु अब मैं घर नहीं जाता, संसार से हमें किसी की जरूरत नहीं, वेश्या की बात एकदम सदा के लिए भूल गया, कहे आप मुझे दीक्षा दीजिए और आप ही के चरणों की आशा में सारा जीवन बिताऊंगा, बस उनका सदा के लिए उनका बन गया। उन्होंने उसकी दीक्षा ली और उनकी सेवा कर और भूल गया। ऐसे ही ऐसे मत्स्य लीला के उपयोगी, मत्स्य जीवों के लिए उपयोगी, अत्यंत सुंदर सच्चिदानंद रूप, कैसा गोकुले विराजमान, गोकुल की गलियों गलियों में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, कानों में कुंडल झूल रहे हैं, अठरों पर बंसी विराजित है, सिर पर मोर मुकुट उसका, मैया ने गुंजा माला पहना दिया है, पीली काठिनी है पहन दिया है, अद्भुत ऐसा सुंदर रूप जगत ने प्रकटित किया है। किस लिए? बद्ध जी उनका दर्शन करके, उनकी लीलाओं को सुन करके भगवान के तरफ मुड़ जाए और सदा के लिए परमानंदित होकर उनके धाम में पहुंच जाए। माया बलम दर्शयिता ग्रहीतम, इसलिए ऐसे सुंदर उसको जगत में प्रकट किया, ऐसा विस्मापनम स्वस्थ से सौभगत है, अपने भी मोहित हो जाए। यही चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने का कारण है। कृष्ण कभी गोकुल में नंद भवन में बचपन में मैया ने मक्खन दे दिया हाथ में, माता के माखन दिए दिए, चोटी बांध दिया, छोटी सी मुरली भी लगा दिया, सजा सजा करके मोर मुकुट भी पहना दिया, कुंजा की माला इत्यादि भी पहना दिया, बना करके दधि मंथन में लग गई पास में। और कृष्ण बड़े आनंदित होकर के एक मणि स्तंभ को, फटिक स्तंभ, एक खंभे को जिसमें दर्पण के समान वो चमक रहा हो और उसको अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और बाएं हाथ से पकड़ करके घूमने लगे, घुमौरी खेलने लग गए, मक्खन रखे हैं, मक्खन हाथ में लेकर के और घूम रहे, खेल रहे हैं, इतने में उनकी छाया दिख पड़ी मंदिर उसके खंभ में देख करके सोचा कि ये लड़का कहां से आ गया। अब तक तो इस लड़के को हमने कभी देखा नहीं, बड़ा सुंदर है, सलोना है, सांवला है, मानो अपने को भी कभी देखा नहीं। वाह, ये तो हमारे समान ही ये है, मोर मुकुट इसको भी है, हाथ में बंसी भी है, और ये तो हाथ में मक्खन भी दिए हुआ है, और हम जैसे घूम रहे हैं ऐसे ये भी घूम रहा है। तो कृष्ण जी इसको सखा बना लेना चाहिए। कैसे सखा बनाए, यदि इसको हम मक्खन खिला दें तो फिर मित्र हमारा बन जाएगा, कभी नहीं छोड़े। ऐसा सोच करके मक्खन उसको देने लग गया, तो वो छाया भी मक्खन देने लग गया। जैसे कि तो देता नहीं है, तो बंदर घुड़की दी, बंदर घुड़की माने बंदर में तुम घुड़की है रकम दे, ऐसे कर, तो वो भी ऐसे किया, तो उन्होंने हाथ उठाया तो उसने भी हाथ उठाया। जैसे जैसे वो करते हैं तैसे तैसे वो भी पोज करने लगा। इतने में मैया ने देखा, दधिमंथन छोड़ दिया और कृष्ण की बाल चपलता देखने लग गई, वहां से प्रसंग मुस्कुरा दिया। कृष्ण ने मैया की तरफ देखा तो वो समझ गया, अरे ये तो मेरी छाया है, बस घट दौड़ करके मैया की गोदी में, मैया ने अंतर से छिपा दिया। वही कहते हैं विस्मापनम, इसलिए उनकी इच्छा हुई, ओहो संसार में मेरे समान और कोई सुंदर नहीं है, और इस रूप को समस्त संसार के लोग देख करके आकर्षित होते हैं। अच्छा, इन लोगों में सबसे आकर्षित कौन होता है विश्व में, कहां के लोग? ब्रजवासी। अच्छा, ब्रजवासियों में इनके सुंदर रूप को देख करके कौन अधिक मोहित होता है? ब्रज की गोपियां, जैसे कि जैसे होता है इसका। इन लोगों से भी अधिक बढ़ करके सबको किसको आनंद होता है, सुख और तन्मयता होती है? ललिता विशाखा इत्यादि गोपी। और इन सबों में भी कृष्ण को देख करके एकदम जड़वत हो जाए ऐसा कौन है? श्रीमती राधिका जी। इसलिए राधिका जी हमारे इस रूप को देख करके उनको कैसा आनंद होता है, उनको कौन सा सुख होता है, ये उनको मालूम नहीं। हमको अपना रूप देख करके आनंद हुआ, किंतु उनको देख करके वो हमसे भी अधिक तन्मय हो जाती हैं, ये कौन सा कैसा रूप? बस काजी इस लीला में नहीं होगा। इसलिए राधा जी का भाव और कांति लेकर के, भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुखकार, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रकटे ब्रजराज। वही ब्रजराज कलि काल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के इन तीन वांछाओं का आस्वादन किया है, और उसी आस्वादन करने से जो जूठा गिर गया उसे त्रिलोकी सब धन्य बन गया। उसका जूठा अब तो नहीं रहा, जूठा का नाम है, उस जूठा का नाम भी जो कोई सुनेगा उनके लीलाओं का वो भी धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं परम पद भूषणम भूषण, कैसा भूषणों का भी भूषण उनका रूप है, कोई भूषण नहीं दिया जाए, सब भूषण निकाल लिए जाए और कृष्ण को नंगा खड़ा कर दिया जाए, छोटे से अभी 3-4 वर्ष के हैं तो वो कैसा दिखेगा? एक समय ये बात है वहां की चंद्र सरोवर की, पुजारियों ने कृष्ण के समस्त अलंकार और वस्त्र निकाल दिए। सूरदास को कहा गया आप तो भगवान का रूप वर्णन करते हैं। उनको ये संदेह था कि इनको कोई कह देता है कि आज कैसे कृष्ण को सजाया है, इसलिए ये फिर वैसा वर्णन करके फिर पद लिख देते हैं। अच्छा, आज अभी साथ ही साथ में इनका रूप बदल दिया जाए और देखे कि क्या वर्णन करते हैं, बस साथ ही साथ उनके जो झिंगली और जो कुछ था वो सब निकाल दिया, मोर मुकुट बंसी तंसी सब रख दी और नंगे ठाकुर जी को वहां पर खड़ा कर दिया। गोपाल जी, वो गोपाल हैं, वही गोपाल आजकल हैं वहां नथद्वार, तो उनको खड़ा कर दिया। सुदास जी से कहा जरा आज का उसका वर्णन कीजिए, तो वो वर्णन करते हैं, भले बने हो नाथ, ओ नाथ आज तो आज भले बन गए, अरे आपकी हाथों की बंसी किधर गई, आपका या मोर का मुकुट जो सिर पर दिया था वो मोर मुकुट कहाँ गया, अरे आपकी वो पहनने वाली वो जो झिंगली थी पीताम्बर था, आपकी पीताम्बर कहाँ जो फहरा रहा था प्रतिदिन वो कहाँ गया, और आज तुम बिल्कुल नंगे, आज अद्भुत आपका रूप है। सब लोग देख करके चकित हुए। ये कृष्ण जब कोई काली है, कालीखा, कोई कालीखा यहां पर लगा दिया तो बड़े भद्दे दिखेंगे कि नहीं? और सुंदर मानो एक तीन का फूल यहां पर हो गया। कहीं नाक पर कुछ लग जाए तो नाक पर जैसे सुंदर लोगों का तिल होता है, उसके रूप को और बढ़ा देता है। यदि कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हों और चलते 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 गायों के खुर से उठे हुए जो आकाश में धूलि व्याप्त है वो धीरे 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 अलकाओं पर गिर लग गई, मुखमंडल में लग गया, समस्त बदन पर उनका लग गया, तो अब भद्दे से दिखेंगे ही? जल्दी से झाड़ धो किया जाए तो अच्छे लगे? नहीं, मानो आज पाउडर लगा रखा है सुंदर। अद्भुत रूप उनका, और उसमें मधुमत्ता आ जाती है उस रूप को देकर। जैसे वो उनको बना दिया वैसे ही सुंदर लगते हैं। इसलिए भूषणम काली कलूठी एक लड़की को थोड़ी अंधी भी नहीं रहे तो काला चश्मा दे दीजिए। अंधी लड़की रहे और वो एक आंख की कानी है तो उसको क्या कर दो? काला चश्मा लगा दो और सुंदर रूप से सजा दो, सुंदर वस्त्र उसको पहना दो, हाथ में घड़ी छड़ी सब लगा दो। और काली है तो उसको हल्दी इत्यादि लगा करके और उसको सब अच्छी तरह से दो चार दिन स्नान करा दो, विवाह के दिन दुल्हन सजा दो तो वो थोड़ी सी दिखने में अच्छी हो जाती है। और दूसरे तीसरे दिन विवाह इत्यादि के बाद में फिर कैसे हो जाएगी? दांत जब भी ऊंचा हो और ऐसी हो तो बड़ी सिद्धि लग जाएगी। उसको सजाना पड़ता है, किंतु कृष्ण को कोई भूषण नहीं रहे तो भी भूषणों के लिए भूषण हो जाता है। ये कुंडल उनकी शोभा को नहीं बढ़ाता, कृष्ण का अंग की कांति ही भूषण के अर्थात कुंडल इत्यादि के सौंदर्य को बढ़ा देता है। उस समय कुंडल की सौंदर्यता आ जाती है। इसलिए कहते हैं परम पदम भूषण भूषण। इसलिए आपका यह जो रूप है आप ही का दोष है, ये हम लोगों का दोष नहीं है। इतना सुंदर रूप लेकर के नहीं आते तो हमारा भी धर्म नष्ट नहीं होता, आपका भी धर्म नहीं। इसलिए सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज गोकुल की गलियों में जो सुशोभित हो रहे हैं, जिनके कर्ण कुंडल इत्यादि उनका मुंह का सब समय चुंबन करते हैं और वो भग रहे हैं और पीछे से जो सुदाम या लड़कियां लेकर के जा रहे हैं, ये इतने सुंदर हैं जिनके उपमान है। किसी चीज का सौंदर्य, किसी चीज का महत्व, ए मैन कैन बी नोन बाय हिज एकम्पनी सोसाइटी। एक आदमी बहुत भला था किंतु आज दुष्ट लोगों के सामने लुटेरे डकैत चोरी व्यभिचारी लोगों के साथ में देखा जाता है। अब उसको हम क्या कहेंगे? ऐ तुम्हारा साथी कैसा है? बड़े दुष्ट लोग हैं तो तुम भी दुष्ट होगा। जैसा व्यक्ति रहता है उसी के अनुसार उसका परिकर भी, अर्थात जैसा परिकर होगा वो व्यक्ति भी वैसा ही होगा ना? अब इस परिकर के दृष्टि से कृष्ण का महत्व बोल रहे हैं। कृष्णचंद्र जी वही है, जबकि शिशुपाल का वध कर रहे हैं यहां पर कि कर्ण दुशासन और ये सब लोग धो रहे हैं, कृष्ण सबका पैर धो रहे हैं बड़े बड़े राजाओं के, तो उस समय परिकर कौन है? पांडव लोग हैं। तो पांडवों के बीच में रहने वाले थे और एक हमारे द्वारकापुरी में है जहां पर कि उद्धव हैं, नारद जी हैं, सत्यभामा रुक्मिणी हैं, और वहां पर रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ में तरह तरह की बातें चल रही हूं, उद्धव दीदी हूं, तो दोनों में कौन सा परिकर हुआ? कौन सा श्रेष्ठ परिकर है? यहां द्वारका वाला रुक्मिणी सत्यभामा वाला। अच्छा, वहां के कृष्ण में और यहां के कृष्ण में श्रेष्ठ कौन है? सत्य तो एक ही है किंतु रस की दृष्टि से कौन में सौंदर्य और माधुर्य इत्यादि रहेगा? वहां वाले द्वारका वाले, और जहां पर कि पांडवों से भी, और जहां पर कि कृष्ण यशोदा मैया के साथ में, सब घरों की माताएं आ गई हैं और कृष्ण से कहती हैं, बेटा जरा नाच तो, एक गुड़ का लड्डू दे। सब गोपियां ताली बजा रही हैं, कोई कह रहे हैं थे थे साथ साथ भीना इत्यादि कहने लगी, कृष्ण को ताली बजाने लगी। बड़ा सुंदर मेरा लाला नाचता है, कैसा, देखो देखो ये कैसे ऐसे नाचेगा। बस कृष्ण को ऐसे नचाने लगे, तुमको थोड़ा सा मक्खन देंगे, मट्ठा दे देंगे चिल्लू भर, जरा नाचो तो। कृष्ण को उत्साह आ गया और झट कृष्ण यहां पर हाथ रखा और ऐसा कर रहे थे कि कान पर आवाज करने लगे और बड़े सुंदर से मंद मंद नृत्य करने लगे। बच्चों का नाचना भी बड़ा सुहाना लगता। एक लड़का हम लोग गए कीर्तन में, यहां पर रख करके इतना सुंदर नृत्य करने लगा, सब लोग देख करके उस चौबे के घर में सब लोग मोहित हो गए। कृष्ण का नाचना देख करके सभी लोग मुक्त हो जाते। तो ये सब नचा रहे हैं। अच्छा, वो द्वारका वाला जो रूप है उन रुक्माणी सत्यभामा के अंदर और यहां वाला जो गोपियों के बीच में स्वर आलाप करते हुए नृत्य कर रहे हैं गोपियों और यहां पर सत्य, ये कौन सा रूप ठीक है, श्रेष्ठ है? गोपियों के बीच में, माताओं के बीच में जो उनको नचा रहे हैं। और यहां से छोड़ करके चलिए, अब रास है, रास में ललिता विशाखा चित्रा इत्यादि सब सखियां हैं और कृष्ण वहां पर, गोपियां थक गई। कृष्ण ने अपना दुपट्टा पीताम्बर लेकर के उनका मुख से वो पसीने के बूंदे हटा दिए, जरा ऐसे झलने भी लग गए। एक गोपी आज तो मैं थक गई थी, अच्छा ठीक, बस पैर दबाने लगे। अब ये कृष्ण का जो वहां पर रूप है और यशोदा मैया के और माताओं के बीच में कौन सा रूप का वैशिष्ट है, इसलिए परिकर के श्रेष्ठता से कृष्ण के रूप गुण लीलाओं का भी माधुर्य अधिक हो जाता है। तो यहां पर इसीलिए कह रहे हैं आज कि अब परिकरों का वैशिष्ट बतला रहे हैं। जैसा परिकर श्रेष्ठ होगा, कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य उन्मादकता इत्यादि सब उसी तरह से बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं तत्वरोपविष्ट भगवान सईश्वरो योगेश्वरांत हृदय कल्पिता सम चकार सगोपी परिषद गो अर्पित त्रैलोक लक्ष्मी के पदम बपुर तथा। ये प्रसंग बतला रहे हैं रासलीला के बाद में, जबकि कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद में फिर लौट करके उनको दर्शन दिया। करोड़ों गोपियों ने अपने अपने गणों में एक एक आसन की कल्पना की। एक गण में मान लिया कि जैसे 10,000, 5,000 या 2,000 या 1,000 महिलाएं हैं, उन्होंने एक आसन बनाया। क्या, कौन सा आसन?
आपने
अपना ये उत्तरीय उतार दिया, उसको भांति कर दिया, चार भांग उसको बिछा दिया। इसके बाद में एक एक गोपी सब अपना अपना उत्तरीय, कहीं कृष्ण को लगे ना कोमल शरीर है इसलिए उसको, दूसरी गोपियों ने ऐसे ही आसन बनाए, तीसरी गोपियों ने, इसी प्रकार से लाखों गुणों के लाखों आसन बना दिए और कृष्ण ने लाखों धारण करके और लाखों आसनों पर बैठ गए। सभी गोपियां देख रही हमारे निकट हैं, कोई गोपी जरा निकट में आकर के उनके हाथों में हाथ ले लिया, कोई गोपी उनके पैरों को पकड़ लिया, कोई गोपी दूसरे हाथ को पकड़ लिया, किसी ने उनके कंधे को पकड़ लिया, कोई जरा दूर खड़ी होकर के उलाहना देने लग गई। ओहो, प्रेम का तरीका यही है, कोई प्रेम करे और कोई वहां से भग करके चला जाए, ये तो उचित नहीं जानते। कोई बहुत दूर दूर खड़ी हो गई, दृष्टि तान करके और कुछ संगमित कुछ क्रोध सा प्रकाश करती हुई और इस प्रकार से देखने लगी, मानो बाण चला करके उसे आघात कर देंगे, इस प्रकार से देखने लगी। उसी समय में वो कारण है जब कृष्ण जी वहीं पर मुस्कुराते हुए उन आसनों पर बैठे हुए हैं, वो कैसे बैठे हैं, चकास गोपी परिषद गो, गोपियां कितनी भाव वाली, लाखों भाव वाली गोपियां सब चारों तरफ से उनको घेर करके बैठी, कोई दिलक भी कर रही, कोई हंसी कर रही है, कोई इसी प्रकार से कर रही है, कोई मान कर रही है। और उसमें कृष्णचंद्र जी कुछ लज्जित होकर के, कुछ लज्जित मुखा
किंतु लज्जा होने पर भी मुस्कुराहट है। ये सब भाव किंचित इत्यादि कितने प्रकार के नाम है, पृथ्वी को भी ये कुछ कुछ भाव, भीतर में कुछ और भाव, ऊपर में कुछ और भाव, इधर कुछ लज्जित हो रहे हैं, उधर भी मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ सिर नीचा है, कभी 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 तिरछी नजर से इधर उधर देख लेते, उसमें कृष्ण का कैसा अद्भुत रूप होगा। उसी के लिए कहते हैं कि त्रैलोक्य लक्ष्मिक बपुर बपुर तथा त्रैलोक्य का जो सबसे सुंदर रूप है लक्ष्मी सुधी, उसको उन्होंने धारण कर दिया। ऐसा मनमत मनमथ मनमत माने कामदेव जो समस्त जगत के, यहां तक कि शंकर ब्रह्मा इंद्र फिंद कुबेर किसी को नहीं छोड़ा, नारद जैसे जोगी और भक्त को भी नहीं छोड़ा, उनको भी अंगुलियों पर नचा दिया इशारों पर। वह कामदेव यहां पर उसको भी मोहित करने वाला रूप, ऐसा मनमत को भी मनमत को वस्तु धारण करके और वहां पर जो किया ऐसा सुंदर था। यहां पर परिषद माने कौन, गोपियों के रहने से कृष्ण का ऐसा रूप प्रकाशित हुआ, या कोई मायावादी अद्वैतवादी होता अथवा साधारण भक्त प्रहलाद भी रहते उनके सामने नृसिंह रूप में प्रकट होता, कोई साधारण होगा तो उनके सामने चतुर्भुज रूप ध्रुव जी को क्या दर्शन दिया। इसलिए ध्रुव जी के उपास्य और इन गोपियों के उपास्य एक होंगे, इसलिए ऐसा रूप धारण किया। अब ये कह रहे हैं बहुत जरा कृष्ण के रूप के तरफ में देखिए, भगे जा रहे हैं, आंसू भी लुढ़क रहे हैं, कुछ डरते हुए पीछे पीछे भी देखते चले जा रहे हैं। मैया मुझे मत मार, मुझे मत मार ऐसा कहते हैं, क्यों ऐसा। अरे जिनके एक नाम से जम का भी सब कुछ दर्द दूर हो जाता है, जम भी जिनके निकट नहीं पहुंच सकते हैं, आज यशोदा मैया के दर से ये चले, क्या उन्होंने किया था उसका वर्णन अब हम लोग कल का, अभी हम लोग 5-7 मिनट